नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में भव्य समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने खेलों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने वाला मंच बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत करोड़ों लोगों के आकांक्षाओं से प्रेरित होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में भारत पश्चिम एशिया संबंधों के बढ़ते महत्व पर बल दिया। प्रयागराज महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए रेलवे 190 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। और क्वालालंपुर में अंडर 19 महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सुपर सिक्स मुकाबले में स्कॉटलैंड को 150 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के देहरादून में एक भव्य समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल सिर्फ एक आयोजन ही नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच है।
माँ गंगा के सुभाषित के साथ आज नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहाँ दिख रही है।
श्री मोदी ने कहा कि इस बार राष्ट्रीय खेलों में कई स्वदेशी और पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल एक तरह के ग्रीन गेम्स भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के खिलाड़ियों के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा कर रही है, ताकि उन्हें क्षमता को निखारने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अथक प्रयास कर रहा है।
भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जब भारत में ओलंपिक होगा तो वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाए। ओलंपिक सिर्फ एक खेल का आयोजन पर नहीं होता, दुनिया के जिन देशों में भी ओलंपिक होता है वहाँ अनेक सेक्टर्स को गति मिलती है।
देश भर के एथलीटों ने एकता और खेल भावना को प्रदर्शन करते हुए जीवंत एथलीट परेड में भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी को सौंपना था, जिसने 13 जिलों में 4000 किलोमीटर की प्रेरणादायक यात्रा पूरी की। ओलंपियन लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री मोदी को मशाल सौंपी। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में अगले महीने की 14 तारीख तक किया जा रहा है। इसमें 35 खेलों की कुल 47 स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्रियों, भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित विभिन्न अतिथि भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ये राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रमुख वैश्विक निवेश सम्मेलन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत करोड़ों लोगों के आकांक्षाओं से प्रेरित होकर विकास के पथ पर बढ़ रहा है।
आज भारत विकास के ऐसे पथ पर चल रहा है जिसको करोड़ों लोगों की एस्पिरेशंस ड्राइव कर रही है। एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसकी चर्चा है, लेकिन भारत के लिए तो एआई सिर्फ नहीं, एस्पिरेशन ऑफ इंडिया हमारी ताकत है। और एस्पिरेशन तब बढ़ती है जब लोगों की नीड्स पूरी होती।
इस कॉन्क्लेव का लक्ष्य ओडिशा को प्रमुख निवेश लक्ष्य तथा औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत देश के विकास का इंजन है। श्री मोदी ने अनुसंधान तथा नवाचार के लिए मजबूत ढांचा तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और उद्योग जगत से अपील की है कि वे इस दिशा में सरकार के साथ सहयोग करें। दो दिन के सम्मेलन के जरिए ओडिशा का लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना है। इसे रोजगार के 3.5 लाख अवसर सृजित होंगे।
ओडिशा में जो रिसोर्सेज है उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी यहीं लगे, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही। आज का ये उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव भी इसी विजन को साकार करने का एक माध्यम है।
सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरा अमृत स्नान होगा। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मेला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में 7 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल और नो वीआईपी जोन घोषित किया गया है। आपात स्थिति में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए पुलिस और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भी 24 घंटे तैनात है। और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। जी दीपेंद्र, कल मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान है, इसे लेकर क्या तैयारियां हैं और वहां माहौल कैसा है?
देखिए लवलीन, कल होने वाले अमृत स्नान से पहले ही जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है संगम घाट पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जब 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान हुआ था तो लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था और कल मौनी अमावस्या में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। अब मेला प्रशासन ने जो है मेला क्षेत्र में जो आने वाली सड़कों के साथ साथ घाटों पर भी जो है विशेष व्यवस्था की है और घाटों की बैरिकेडिंग की गई है, गोताखोरों को तैनात किया गया है। और बता दूं कि इसके अलावा एनडीआरएफ की जो है 20 टीम जो है सभी 44 घाटों पर तैनात की गई है। मेला प्रशासन ने जो है 12 किलोमीटर लंबा घाट तैयार किया है ताकि सभी लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा सकें। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा की बात करें तो 50,000 से अधिक स्थानीय और अर्धसैनिक बलों को यहां पर तैनात किया गया है। जी लवलीन,
धन्यवाद दीपेंद्र इस जानकारी के लिए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि रेलवे ने पहले से तय विशेष ट्रेनों के अलावा 60 और विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है।
जो डी डे है, जो कल है, उस पे हम कम से कम 170 से 180 गाड़ियां स्पेशल चलाएंगे, 190 तक हम लोग जाएंगे। ये तो केवल स्पेशल गाड़ी की बात है। इसके अतिरिक्त 110 गाड़ियां जो रेगुलर गाड़ियां उस रूट पे चलती हैं वो चलेंगी। प्रयागराज एरिया से हमारे पास जो गाड़ियां हैं वो हर 4 मिनट में आपको एक गाड़ी मिलेगी, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
श्री कुमार ने कहा कि रेलवे उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया के देशों के साथ व्यापार, संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों में एक दशक से चली आ रही वृद्धि का उल्लेख करते हुए आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में इस भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री ने अबू धाबी में रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में भारत और पश्चिम एशिया के देशों के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। हाल के वर्षों में विशेषकर खाड़ी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध काफी गहरे हुए हैं। भारत और खाड़ी के बीच व्यापार सालाना 160 से 180 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस क्षेत्र में 90 लाख से अधिक भारतीय काम कर रहे हैं।
Many of you would be familiar with the intensity of India's ties with the Gulf. Our trade is in the region of about 160 to 180 billion dollars annually. The energy dimension is the most visible one, but there is much more to it than that. Whether it is projects, technology, education, health or services, our presence in the Gulf is both pervasive and crucial.
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल और निर्दलीय प्रत्याशी तथा प्रमुख नेता रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम कस्तूरबा नगर निर्वाचन क्षेत्र में रोड शो किया और कालकाजी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर यमुना जल के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने और झूठे दावे करने का आरोप लगाया।
आपने कहा कि जल बोर्ड की रिपोर्ट है कि इसमें जहर मिलाया गया। आपके पास अगर रिपोर्ट है तो कल सार्वजनिक करिए, हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे।
वरिष्ठ भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजेंद्र नगर, मंगोलपुरी और विकासपुरी में प्रचार किया। उन्होंने यमुना की सफाई और शहर की खराब सड़कों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला।
सड़कें कितनी खराब है अंदाजा लगा सकते हैं क्या? ये दिल्ली के अंदर की सड़कें होनी चाहिए थी क्या? सीवर सड़कों से बह रहा है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज घोंडा में एक जनसभा की और इस बात को दोहराया कि शहर के लोगों को जीरो बिजली बिल मिलना जारी रहेगा।
मैंने कहा था बिजली फ्री करूंगा, फ्री कर दी। मैंने कहा था पानी फ्री करूंगा, पानी फ्री कर दिया। मैंने कहा था बस फ्री करूंगा, बस फ्री कर दी। जितनी योजनाएं कह रहा हूँ सारी पूरी करूंगा।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज शाम पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित किया और मुख्यमंत्री के रूप में अपने आवास पर कथित भव्य खर्च को लेकर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया।
केजरीवाल जी पहले आए थे, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं तो ये सच्चाई है।
एक अन्य कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए बादली क्षेत्र में रोड शो किया। दिवाकर के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग द रिट्रीट कल नई दिल्ली में विजय चौक पे आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। बीटिंग द रिट्रीट के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यातायात व्यवस्था के संबंध में परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस के अनुसार विजय चौक कल दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा। अंडर 19 महिला विश्व कप क्रिकेट में सुपर सिक्स चरण के अंतिम मैच में भारत ने स्कॉटलैंड को 150 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में एक विकेट पर 208 रन बनाए थे। जवाब में स्कॉटलैंड की टीम 14 ओवर में 58 रन पर ही सिमट गई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला गुजरात के राजकोट में जारी है। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 172 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 ओवर में 16 रन बना लिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। कल सवेरे 6:23 पर GSLV-F15 रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेगा। ये NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाएगा। GSLV-F15 स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ GSLV की 8वीं परिचालन उड़ान है और भारत के सपोर्ट श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इन खेलों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करने वाला मंच बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सरकार ने संसद के बजट सत्र पहले बृहस्पतिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में भारत पश्चिम एशिया संबंधों के बढ़ते महत्व पर बल दिया। प्रयागराज महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए रेलवे 190 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। और कुआलालंपुर में अंडर 19 महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सुपर सिक्स मुकाबले में स्कॉटलैंड को 150 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।